धवला पुस्तक पहिले लेक्चर नंबर 20 ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम नमः सिद्धेभ्य ओम शुद्धात्मने नमः नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वर्षायाणं नमो लोये सौवसाहूणं सिद्धमणन्तमणिन्दिय मणुवममपत्तसोखमणवच्चं केवलपहोहणिज्य दुन्नयतिमिरं जिनं नमः। आचार्य वीरसेन स्वामी रचित यह धौला नामक टीका है जो षटखंडागम ग्रंथ पर लिखी हुई है, जिसके कर्ता है पुष्पदंत और भूतबली आचार्य। अभी हम पहली पुस्तक के पृष्ठ संख्या 149 पर आ गए, 149। यहाँ तो बात अपनी चल रही थी मार्गणाओं की, 14 मार्गणा हमने देखी, आप ठीक है नहीं थे? नहीं, मार्गणा के नाम याद है कि भूल गए? थोड़ा गति इंद्रिय का है, योग वेद कषाय, ज्ञान संयम दर्शन लेशा भव्य सम्यक संज्ञ रहा है। उसमें से अभी दर्शन मार्गणा की बात अपनी हो रही थी, यहाँ पर दर्शन क्या है उसकी बात चल रही थी। तो कहते जिसके द्वारा अवलोकन किया जाता है उसको दर्शन कहते हैं। अलग अलग पद्धति से उसकी परिभाषाएं बताई है, अंतर्मुख चित्त प्रकाश को दर्शन कहा और बहिर्मुख चित्त प्रकाश को ज्ञान कहा। अभी उसमें भी कंफ्यूजन बहुत, यानी ऐसा लगता है इसमें छद्मस्थ जो है एट ए टाइम दर्शन उपयोग और ज्ञान उपयोग में केवली के तो होता है, छद्मस्थ के नहीं होता। उपयोग नहीं है, पूरी पर्याय तो होगी पर पर्याय अकेले उपयोग रूप नहीं होती है। लब्धि उपयोग हो भावेंद्रियम कहते हैं, लब्धि और उपयोग मिलकर उसके ज्ञान की या दर्शन की पर्याय है। तो यहाँ कह रहे हैं देखो, यानी आत्मा के दर्शन को दर्शन कहते हैं ऐसा भी उसमें लिया, आत्मा का ग्रहण। देखो पेज नंबर है, अंतर्मुख प्रकाश और बाह्य प्रकाश एक सब बात उसमें हुई थी। हाँ देखो अभी हम लास्ट परिभाषा पर आते हैं। देखो ये सामान्य का ग्रहण करने वाला दर्शन है, तो सामान्य का अर्थ क्या समझना है? सामान्य के अर्थ दो हो सकते हैं, एक तो प्रत्येक वस्तु सामान्य विशेषात्मक है, विशेष क्या है उसके पर्यायों के भेद करना, गुणों के भेद करना, ये उसके विशेष है। या वस्तु के विशेष क्या, तो उसके हम उसके जिसको कैरेक्टर्स पहचान लेते हैं उसको भी विशेष कहेंगे, वो विशेष की बात नहीं है। वस्तु सामान्य विशेषात्मक होती है, जो हम नयों का विषय कहते हैं ये सामान्य, यानी भेद किए बिना वो सामान्य और भेद करना वो विशेष, ये सामान्य विशेष का एक अर्थ हुआ। नहीं हाँ नहीं उसके बाद फिर बाद में करेंगे, पहले सामान्य और विशेष जो वस्तु के दो भेद है वो सामान्य यहाँ दर्शन के लिए नहीं लेना, क्योंकि सामान्य का क्या, सामान्य और विशेष कोई भिन्न सत्ता तो है नहीं है, सत्ता एक ही है, विशेष के बिना सामान्य नहीं और सामान्य के बिना विशेष नहीं। यानी वस्तु को जो हम जानते हैं कहते हैं तो सामान्य विशेषात्मक पूरे ही को जानते हैं, ज्ञान भी सामान्य विशेष को ही जानता है तो उसको प्रमाण कहते हैं। फिर उसके प्रमाण के भेद में हम नयों की, क्योंकि प्रमाण से जाने हुए के बाद हम उसमें नयों से सामान्य को अकेला सोच सकते हैं, विशेष को अकेला सोच सकते हैं। भिन्न भिन्न करना ही नहीं है, कुछ नहीं है, जानने की बात है। वहाँ पर वो सामान्य विशेष की अपेक्षा जो सामान्य है वो दर्शन का विशेष विषय नहीं है। यानी आत्मा भी सामान्य विशेषात्मक है, वहां पर भी अपना सामान्य और पर पदार्थ का सामान्य, ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना है।
तो दर्शन ध्यान का, तो वो ज्ञान का विषय है,
सामान्य भी और विषय।
दर्शन का विषय क्या है?
दर्शन का विषय विषय वो भी स्व और पर है, परंतु उसमें स्व पर का भेद भी नहीं करेंगे। स्व को स्वरूप, स्वर को पर रूप, तो ज्ञान का कार्य है ये, प्रकाशित तो दोनों को करता है। भेद किए बिना अनेक वस्तु यहाँ पर है, हमने टेबल की ओर देखा, जब ज्ञान हुआ कि ये पुस्तक है, ये क्लिप है, ये पेन है, पेंसिल है, चादर है, अनेक वस्तुओं का वो क्या हुआ, ज्ञान हुआ, क्योंकि हमने हर एक वस्तु भिन्न भिन्न पहचानी है। ये इसके विशेष कहेंगे, क्योंकि पुस्तक के कुछ अपने कैरेक्टर है, तभी तो हमने इसको पुस्तक कहा, ये पेंसिल कहा, ये पेन कहा, ये रूल कहा, तो इसके कोई अपने कैरेक्टर्स है, तभी तो ये तो ज्ञान का विषय हो गया। हमने जान लिया ये वस्तु कौन सी है, पहचान ली, पर वस्तु को बिना पहचाने, बिना पहचाने मात्र है, इतना हमें ज्ञान होने के पहले है ऐसा अवलोकन होता है, इसको कहते हैं सत्ता का ग्रहण, सत्ता का अवलोकन, उसी को कहेंगे सामान्य वस्तु को सामान्यपने से ग्रहण करना। सामान्यपने ने वो पहचान ली वस्तु, तो उसका विशेष हो गया, ये ज्ञान का हो गया, ज्ञान हो गया। ज्ञान होने के पहले वस्तु उसके अस्तित्व मात्र का अवलोकन होता है, और उसके बाद उसका ज्ञान होता है, वो दर्शन है।
देखो बात ऐसी है, सामान्य और विशेष कहा तो वो ज्ञान में आया, और सामान्य विशेष का भेद किए बिना जो सबको एट अ टाइम जानेगा उसको कहेंगे वो सामान्य। अब हम जानेगा कहना गलत है, देखेगा, अवलोकन करेगा, सामान्य प्रतिभास करेगा, प्रतिभास यानी ऐसा कुछ इमेजिनरी है, ऐसा नहीं, जैसे हम केवल ज्ञान की अपेक्षा से हम जल्दी समझेंगे वहाँ क्या होता है। दर्शन गुण भी है और ज्ञान गुण भी है, उपयोग तो हमारा तुम्हारा जो छद्मस्तों का पहले उपयोग एक में लगेगा, बाद में दूसरे में लगेगा, लेकिन वहाँ केवली के दोनों एट ए टाइम युगपत लगते हैं। तो विश्व के जितने द्रव्य हैं, जितने गुण हैं, जितने पर्याय हैं, जितने अविभाग प्रतिच्छेद हैं, इनको भेद किए बिना वो ख्याल में आना, ख्याल में इन द सेंस अभी हम कहेंगे कि अवलोकन करना, वो उसी टाइम है वो अलग 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 सबसे विशेष रूप से जानना, ये ज्ञान का कार्य, और भेद किए बिना सामान्य अवलोकन को कहेंगे दर्शन गुण, यही आप बता रही हैं। अब इसमें भी थोड़ा सा अलग अलग तरीके से यहाँ डेफिनेशन दिए है।
यानी वस्तु जो सामान्य विशेषात्मक है वो पूरी वस्तु हो गई, पूरी वस्तु ही ज्ञान का विषय और पूरी वस्तु ही दर्शन का विषय, ये नक्की करो पहले। परंतु दो भिन्न, दो चार पांच भिन्न वस्तुएं हैं, उनमें ये कौन सी वस्तु पहचान लिया वो ज्ञान का कार्य हो गया, वो ज्ञान हो गया, उसको साकार कहते हैं। ज्ञान ज्ञान जो है वो साकार उपयोग वाला होता है, और दर्शन अनाकार उपयोग वाला होता है। अनाकार है उसके, हमने उसकी विशेषताओं को पहचान नहीं लिया, वो वस्तु है बस, इतना बस है वस्तु, इतना ख्याल में आ गया तो उसको कहेंगे दर्शन। हाँ, अनाकार निराकार दोनों कहेंगे, उसको निर्विकल्प भी कहेंगे, ज्ञान को विकल्प कहेंगे। ज्ञान सभी भेदों सहित जान लेता है, इसलिए ज्ञान को सविकल्प कहते हैं। तो केवल ज्ञान सविकल्प है कि निर्विकल्प है? सविकल्प है। वो विकल्प के अनेक अर्थ होते हैं, भेद करके जानना ये ज्ञान का लक्षण है, इसलिए ज्ञान को साकार भी कहेंगे, ज्ञान को सविकल्प भी कहेंगे। वो विकल्प है ना, वो राग वाला विकल्प नहीं समझना, हम तो उसको सुनने के आदि हो गए, हमें निर्विकल्प अनुभव करना है ना। विकल्प के दो अर्थ है, राग वाला, राग सहित उसको भी विकल्प कहेंगे, और भेद सहित उसको भी विकल्प कहेंगे। ज्ञान का कार्य क्या है, वो सब बिल्कुल एक 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 को पृथक पृथक करके वो वस्तु को समझ लेता है, जान लेता है। इसलिए केवल ज्ञान हो या हमारा ज्ञान हो, वो ज्ञान का लक्षण क्या है, वो सविकल्प ही होता है। वही विकल्प के अनेक उसके अर्थ हमने वो पंचाध्याय में बहुत विस्तार से उसको देखा था, आपके शायद सुनने में आ जाएगी बात। हाँ आपने लिए है ना, इसीलिए सुनना कभी। अभी हम तो यहाँ देख रहे, देखो अभी पेज नंबर 148 निकालना।
यहाँ पे 146 पे लिखा है अंतर्मुख चित प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञान माना,
ज्ञान माना है।
अंतर्मुख चित प्रकाश पे हम किसको
वही बता रहे अभी, अंतर्मुख चित प्रकाश या उसको ज्ञान कहा, ज्ञान को जो विषय करता है वो दर्शन ऐसा भी कहा, उसको आत्मा को विषय करता है ऐसा भी कहा। पर आत्मा किसको कहना, ये सामान्य कोई आत्मा कह दिया, ये बात 148 पेज पर बताइए, वही मैं आपको बताना चाहती हूँ। देखो हाँ, नहीं तो क्या होगा, आत्मा को जानता है वो दर्शन और बाहर वस्तु को जानता है वो ज्ञान, ऐसा उसका अर्थ नहीं है, परिभाषा में ऐसा ही लगता है। आप जो प्रश्न पूछने के पीछे यही तो ये बात लगती है। हाँ 146 में जो बताया था अभी उसी का एक्सप्लेनेशन चलेगा। देखो पहले 146 में सेकंड पैराग्राफ से ये विषय शुरू हुआ था, जिसके द्वारा देखा जाए अर्थात अवलोकन किया जाए उसे दर्शन कहते हैं। अब उसके नीचे का समाधान वाला बात वहां से पढ़ो, तो कहते कि यदि ऐसा अगर हम कहेंगे, शंकाकार पूछ रहा था कि जिसके द्वारा देखा जाए उसको दर्शन कहते, ऐसा अगर कहेंगे तो ज्ञान के द्वारा भी वस्तु समझ में आती है, तो ज्ञान और दर्शन में कोई भेद ही नहीं होगा। तो ज्ञान और दर्शन में भेद नहीं होगा इसको समझाने के लिए वहां लिखा है, देखो क्या कहते हैं, अंतर्मुख चित प्रकाश को दर्शन और बहिर्मुख चित प्रकाश को ज्ञान माना जाता है। ये चित शब्द दोनों के लिए है, चित प्रकाश, इसलिए इन दोनों के एक होने में विरोध आता है, यानी ज्ञान भिन्न बात है और दर्शन भिन्न बात है, ये इतनी बात बताई यहाँ पर। तो चित प्रकाश बताएं तो कहा था ये चैतन्य क्या है, तो चैतन्य है संवेदन होना, वो चैतन्य कहते अपना और अनंत पर्याय रूप त्रिकाल विषय सबका। अब यहाँ प्रश्न यही फिर हो रहा था ज्ञान और दर्शन में एकता हो जाएगी, पेज नंबर 147 शंकराचार्य ने पूछा था कि जीव अपने स्वरूप को और परपदार्थों को जानता है उसे ज्ञान कहते हैं, तो ज्ञान और दर्शन में एकता आ जाती है। तो उसके लिए बताते हैं कि ज्ञान के द्वारा क्या समझते हैं समाधान में, यह घट है यह पट है इत्यादि विशेष रूप से, ये जो विशेषता जानता है वो ज्ञान है, और दर्शन ये घट है और ये पट है ये विशेषता को वो नहीं जानता, वो ग्रहण नहीं करता, सामान्य रूप से ग्रहण करता है। उसी को यहाँ आत्मा को अंतर्मुख चित प्रकाश उसी को कहा है। फिर आगे पढ़ो, देखो फिर शंकराचार्य ने और एक प्रश्न पूछा, अंतरंग सामान्य और बहिरंग सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन है, यानी सभी वस्तुओं के स्व के और पर के सामान्य को ग्रहण करता है वो दर्शन, और स्व और पर के विशेष को ग्रहण करता है वो ज्ञान, ऐसे वो पूछना चाहता है, इसमें उसकी मिस्टेक हो रही है। तो कहते ऐसा नहीं है, वस्तु का ग्रहण यानी जानना या दर्शन जो होता है पूरे अखंड वस्तु का होता है, उसी को प्रमाण कहेंगे, ज्ञान प्रमाण उसी को कहेंगे। उसके प्रश्न उत्तर में देते, देखो सामान्य और समाधान में, सामान्य और विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है, क्रम के बिना ग्रहण होता है ना, सामान्य विशेषात्मक वस्तु एट ए टाइम जानी जाती है। आपने ऐसा नहीं किया पेंसिल का सामान्य जाना फिर इसका विशेष जाना, ऐसे थोड़ी होता है। पेंसिल आपने कह दिया तो सामान्य विशेषात्मक पूरी वस्तु जानने में आती है। तो फिर शंका कहते हैं कि सामान्य विशेषात्मक वस्तु का क्रम के बिना ही ग्रहण होता है तो वह भी हो जाओ, हमें क्या उसमें। तो कहते कि छद्मस्थ का उपयोग एट ए टाइम तो दोनों का नहीं होगा। वो कहता है दर्शन सामान्य को देख रहा है और ज्ञान विशेष को देख रहा है, वस्तु के सामान्य विशेष में से एट ए टाइम, ये मेरे हाथ में कोई वस्तु है तो दर्शन ने इसके सामान्य को ग्रहण किया और ज्ञान ने इसके विशेष को ग्रहण किया, ऐसा मानेंगे तो एट ए टाइम। तो कहते छद्मस्थ का ऐसा नहीं हो सकता, छद्मस्थ का जो उपयोग है वो क्रमिक ही होता है, दर्शनोपयोग और ज्ञानोपयोग क्रमिक होता है, दर्शनोपयोग पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, केवली के एट ए टाइम होता है, तो इसलिए वो बात भी घटित नहीं होती है। ये दूसरा ऑब्जेक्शन रूल आउट किया।
तो हम जो रूपी और आरोपी में भेद करते हैं, और रूपी और आरोपी में, रूपी द्रव्य और आरोपी द्रव्य, तो आरोपी में सामान्य भाष कैसे होगा, जो हम लोग को प्रतिभाष कहते हैं सामान्य, के विशेष जाने बिना।
आरोपी द्रव्य में प्रमेय तो गुण है कि नहीं है, तो ज्ञान और दर्शन का विषय होगा कि नहीं होगा।
अच्छा, तो वहाँ पे भी ऐसे ही चलेगा कि दर्शन पूर्वक ज्ञान होगा।
हाँ, दर्शन उपयोग, परंतु अरूपी वस्तुओं को कौन अच्छा हम छद्म से जान रहे हैं, हमने तो आगम के द्वारा जाना।
अच्छा, वहाँ पे आगम,
आपने काल द्रव्य देखा क्या?
नहीं।
हाँ, वो मत दर्शन पूर्वक ज्ञान उसमें कैसे लगा सकेंगे, मन का विषय है, मन संबंधी भी वो जो है विचार आया उस संबंधी, तो उसमें भी दर्शन उपयोग पूर्वक ज्ञान उपयोग
मन, मन में तो हम लोग को जो होता है वहाँ पे मति ज्ञान होता है। कैसे
मति ज्ञान हमने इसमें लिया, शुद्ध ज्ञान भी होता है। एक जैसे यहाँ से आत्मा शब्द सुना, यहाँ हमने धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य सुना और सुनकर उसके बारे में हम विचार करते हैं। यहाँ तो शब्द सुना और हमने उस विषय को पकड़ लिया, वो श्रुत ज्ञान ही तो हुआ।
तो श्रुत ज्ञान,
ये तो श्रुत ज्ञान होता ही है ना, श्रुत ज्ञान में भी उसका, उसके तो है ही, उसका योगदान तो है, क्योंकि इंद्रियों से जाना और फिर हम उस संबंधी विचार कर रहे हैं।
नहीं तो श्रुत ज्ञान में हम लोग को दर्शन उपयोग को कैसे लेना?
मति ज्ञान के पहले दर्शन उपयोग हुआ, फिर मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ। ये जरूरी नहीं कि हर ज्ञान के पहले दर्शन होना चाहिए। ज्ञान से ज्ञान, श्रुति ज्ञान के एक विकल्प से दूसरा विकल्प भी चलता रहेगा, तो उसके लिए हर बार उसको नया नया दर्शन चाहिए ऐसे कोई जरूरी नहीं है। पहले मति ज्ञान हुआ, मति ज्ञान होने के पहले दर्शन हुआ, यानी दर्शनों उपयोग पूर्वक मति ज्ञान और मति ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान हुआ, इसलिए वहाँ अन्य उपयोग नहीं, यानी दर्शन अन्य नहीं लगाते। जैसे मन परे ज्ञान, कौन सा दर्शन है वहाँ पर? अवधि ज्ञान के पहले अवधि दर्शन है
मति।
हाँ, मति ज्ञान पूर्वक मन परे ज्ञान है, मन में विचार आए ना, इसके मन में क्या जानो, ख्याल में आती है बात? ये हर ये जरूरी नहीं कि वो ज्ञान पूर्वक आगे वाला ज्ञान होगा। श्रुत ज्ञान के एक विकल्प से दूसरा विकल्प पर हम चले गए, तो जरूरी नहीं कि बीच में उसका दर्शन होना चाहिए, पर उसके पूर्व पूर्व में जो हुआ था उसके पहले दर्शन हुआ था। या मन संबंधी होगा तो अचक्षु दर्शन कहीं भी देंगे वहां पर। देखो, अभी ये जो विषय चल रहा है उसको पहले समझो। एक साथ नहीं होते फिर ये बात यहाँ नीचे के पैराग्राफ ये बता रहे हैं कि वस्तु अकेला सामान्य को ही ग्रहण किए बिना विशेष का सामान्य तो कहते नहीं हो सकता, और विशेष को ग्रहण करो जो बिना सामान्य का है, तो ऐसे सर्वथा वस्तु होती नहीं जो मात्र विशेषात्मक है। सामान्य विशेषात्मक ही वस्तु होती है और उसका जो ग्रहण होता है उसको हम चैतन्य कहेंगे, ज्ञानोपयोग या दर्शनोपयोग जो कुछ है। देखो, ये फिर पैराग्राफ पढ़ेंगे, भले वो भाषा थोड़ी अटपटी है मगर 147 पेज पर नीचे का पैराग्राफ। दूसरी बात यह है कि सामान्य को छोड़कर केवल विशेष अर्थ क्रिया करने में असमर्थ है, यानी सामान्य को छोड़कर अकेले विशेष कोई वस्तु नहीं होती, अकेले विशेष को पकड़ ले ऐसा कहीं हो नहीं सकता, और जो अर्थ क्रिया करने में असमर्थ होता है वह अवस्तु रूप होता है। यानी अकेले विशेष कहो तो वो वस्तु ही नहीं, अवस्तु है। अकेले सामान्य कहो तो वो भी अवस्तु है, वस्तु नहीं हो सकती। वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक ही होती है। हाँ, वो सामान्य विशेष कोई भी भेद किए उसको, गुणों के भेद कहो, पर्याय के कहो, प्रदेशों के कहो, जिसको हम द्रव्यार्थिक पर्यार्थिक नय का विषय कहते हैं। नय का बात अलग है, यहाँ पूरे ज्ञान का विषय की चर्चा चल रही है। वो भी नय किसको कहेंगे, कब कहेंगे, जब प्रमाण से पूरी वस्तु को ग्रहण कर लेते हैं सामान्य विशेषात्मक, बाद में वो हम उसको भेद पूर्वक समझ में लेते, श्रुत ज्ञान में उसका विचार करते हैं, उसकी बात अलग है कि वो श्रुत ज्ञान में लगते हैं। उसमें भी कंडीशन क्या है, प्रमाण से जानी हुई वस्तु वहाँ पहले ज्ञान है, ज्ञान प्रमाण है, बाद में उसके आगे वाला वो नहीं लगेगा, तभी नहीं लगेगा, श्रुत ज्ञान पूर्वक श्रुत ज्ञान होगा। तो इसलिए वहाँ वो उसकी नयों की यहाँ चर्चा नहीं है, यहाँ ज्ञान की और दर्शन की चर्चा है। तो अकेली विशेष नाम की कोई, अभी जैसे आपने सजेस्ट किया द्रव्य और पर्याय की बात करेंगे, पूरे अखंड वस्तु को भी द्रव्य कहते हैं और उसके पर्याय का अंश अलग और द्रव्य का अंश अलग, उसको भी द्रव्य कहते हैं। इसलिए बहुत सारी कन्फ्यूजन इसलिए है, जब कहेंगे पर्याय बिना का द्रव्य या द्रव्य बिना की पर्याय, ये द्रव्य और पर्याय का कुछ आपस में कुछ नहीं है, वो स्वतंत्र ये स्वतंत्र, ऐसा जहाँ अपेक्षा वश कथन आता है वहाँ द्रव्य का अर्थ पूरी वस्तु नहीं है, उसके वो द्रव्यार्थिक का जो विषय वाला सामान्य है उसको द्रव्य कहते हैं। सामान्य विशेषात्मक उसको पूरा द्रव्य भी कहते हैं, उसको वस्तु भी कहते हैं, हम उसके लिए वस्तु शब्द लेंगे और उसमें एक सामान्य अंश है उसको द्रव्य कहेंगे और विशेष अंश है उसको पर्याय कहेंगे। समझने के लिए भी ये शब्द हम यूज करेंगे। वस्तु तो सामान्य विशेषात्मक ही होती है, अकेले उसका सामान्य अंश जो हम द्रव्य कहेंगे तो वो अपना कार्य करने में समर्थ होगा तो नहीं। अब फिर अकेला विशेष अर्थ क्रिया बताए ना, तो अपना वो कुछ कार्य करे, अरे विशेष अकेला विशेष होता ही नहीं, अकेला सामान्य होता ही नहीं, यानी वो वस्तु सिद्ध नहीं होती है। अकेले सामान्य को पकड़ो तो भी वो वस्तु नहीं है, अकेले विशेष को पकड़ो तो भी वस्तु नहीं है। इसलिए द्रव्य पर्याय शब्द इसलिए नहीं ले रहे कि वो अखंड वाले को भी द्रव्य कहते हैं और ये अंश को भी द्रव्य कहते हैं। समय सार में कहीं कहीं जो कथन आता है उसमें अंश को द्रव्य कह रहे हैं कि पूरे वस्तु को, ये अगर क्लियर नहीं होगा तो बहुत कन्फ्यूजन होता है, कभी ऐसा कहते हैं कभी वैसा कहते, कुछ समझ में नहीं आता है ना, होता है ना ऐसा। हाँ पर्याय स्वतंत्र है, अरे पर्याय कहाँ स्वतंत्र रहेगी बिना द्रव्य के, परंतु वहाँ दो अंश करके फिर उसकी स्वतंत्रता ख्याल में प्रतीति में लेने के लिए, वो अलग बात है। यहाँ कह रहे हैं अकेला विशेष भी नहीं रहता, अकेला सामान्य भी रहता, वो अवस्तु है, अवस्तु को विषय करने वाला ज्ञान भी अवस्तु रूप होगा, ये न्याय से समझा रहे। अभी इसको फिर पढ़ेंगे आपको ख्याल में आएगा। देखो दूसरी बात यह है कि सामान्य को छोड़कर केवल विशेष अर्थक्रिया करने में असमर्थ है, यानी वो वस्तु ही नहीं होती है, वस्तु अपनी अर्थक्रिया करती है, अपना प्रयोजनभूत कार्य करता है, अर्थक्रिया उसका अपना अपना कार्य, और जो अर्थक्रिया करने में असमर्थ होता है वह अवस्तु रूप पड़ता है, यानी वस्तु तो अपने अर्थक्रिया करती है, यानी उसका अपना जो कुछ प्रयोजन उसका जो स्वरूप है, अतएव उसका ग्रहण करने वाला होने के कारण ज्ञान प्रमाण नहीं हो सकता। जो अवस्तु को ग्रहण करता है वो ज्ञान प्रमाण कैसे होगा, तथा केवल विशेष का ग्रहण भी तो नहीं हो सकता, क्योंकि सामान्य रहित अवस्तु रूप केवल विशेष में कर्ता कर्म रूप व्यवहार नहीं बन सकता। अकेला विशेष लो तो उसमें भी वो कर्ता ये कर्म जो हम द्रव्य जो करता है और वस्तु जो है सामान्य विषय ऐसा उसमें नहीं बन सकता, क्योंकि वहां कोई है ही नहीं ना अकेले सामान्य कोई वस्तु होती है ना अकेला विशेष कोई वस्तु होती है। इसलिए केवल विशेष को ग्रहण करने वाले ज्ञान में प्रमाणता सिद्ध नहीं होने से केवल सामान्य को ग्रहण करने वाले दर्शन को भी प्रमाण नहीं मान सकते। प्रश्नकार ने पूछा था ये सामान्य को ग्रहण करता है उसको दर्शन कहो, भले वो सामान्य अपना हो या पर का हो, और सबके विशेष को ग्रहण करता है उसको ज्ञान कहो, तो उसमें दोनों ही अकेले अगर ग्रहण करेंगे तो वह अवस्तु होती है, इसलिए उसको ग्रहण करने वाले भी प्रमाण नहीं हो सकते, ये कहना चाहते हैं। अर्थात जबकि सामान्य रहित विशेष और विशेष रहित सामान्य वस्तु रूप से सिद्ध ही नहीं होते, यानी वस्तु का स्वरूप ही सामान्य विशेषात्मक है, तो केवल विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान, यानी सिर्फ विशेष को जो ग्रहण करता है, ये जानना इसलिए नहीं कहा क्योंकि दोनों ही ग्रहण कर रहे हैं, जानने को ज्ञान कहेंगे और ये दर्शन के लिए सामान्य अवलोकन को दर्शन कहेंगे। तो कहते विशेष को ग्रहण करने वाला ज्ञान और केवल यानी मात्र सामान्य को ग्रहण करने वाला दर्शन प्रमाण कैसे माने जा सकते हैं, उसको प्रमाण नहीं कह सकते, यानी उसकी वो परिभाषा ठीक घटित नहीं होती है। ये मैं कल का विषय फिर दोबारा पढ़ रही हूँ। तो फिर शंकाकार पूछता है 148 पेज पर, तो प्रमाण का अभाव ही क्यों नहीं मान लिया जाए? तो प्रमाण ही मत मानो ना, ज्ञान प्रमाण होता है, दर्शन प्रमाण होता है, उसको प्रमाण को मानो ही मत। तो प्रमाण को ही नहीं मानेंगे ना? उसका अभाव मान लेने पर प्रमेय प्रमाता आदि सभी का अभाव मानना पड़ेगा। देखो, प्रमेय यानी ज्ञेय, प्रमाता यानी ज्ञाता, और ये प्रमाण यानी ज्ञान, ज्ञान दर्शन दोनों को ही प्रमाण कहा है यहाँ पर। आदि, आदि यानी वो ज्ञप्ति, ज्ञान का जो कार्य हो रहा है उसको ज्ञप्ति कहेंगे, प्रमिति उसका नाम होगा। ये कुछ भी घटित नहीं होगा, जानने वाला भी नहीं होगा, वो ज्ञान भी नहीं होगा, ज्ञेय भी नहीं होगी, कुछ नहीं घटित होगा। शंकाकार पूछता है उस सभी का अभाव होता है तो हो जाओ, तो कहते यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि प्रमेय आदि का अभाव देखने में नहीं आता, यानी जो ज्ञेय तो हमें ज्ञान में आते रहते हैं, उसका अभाव तो है ही नहीं, वस्तुएं तो सारी है, उनका सद्भाव ही दृष्टिगोचर होता है। अतः अभी क्या सिद्ध हुआ, सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को ग्रहण करने वाला ज्ञान है और सामान्य विशेषात्मक स्वरूप को ग्रहण करने वाला दर्शन है, यह सिद्ध हो जाता है। फिर उसके ऊपर शंका चल रही उसको, तो कहते उक्त प्रकार से दर्शन और ज्ञान का स्वरूप मान लेने पर वस्तु का जो सामान्य ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं, परमागम के इस वचन के साथ विरोध आता है। यहाँ जो सामान्य ग्रहण का अर्थ शंकाकार समझा नहीं है, इसलिए वस्तु में भेद किए सामान्य विशेष के और उस सामान्य को ग्रहण करना चाहता है। यहाँ क्या कहा था, वस्तु का सामान्य ग्रहण होता है, वस्तु के सामान्य का अंश का ग्रहण अलग बात है और वस्तु का सामान्य ग्रहण अलग बात है। वस्तु का सामान्य ग्रहण यानी क्या, आप यहाँ दो बैठे हैं तो ये तेजल है और आप सोनीबेन हो, तो हमने देखा आपकी तरफ, यानी पहले आँख खोली, तो यहाँ कौन बैठा है, क्या है, स्त्री है कि पुरुष है कि आदमी है, और कुछ नहीं, कुछ हमने डिफरेंस नहीं जाना, बस है इतना सत्ता का ग्रहण, उसको कहेंगे सामान्य रूप से ग्रहण, वस्तु का सामान्य ग्रहण। ग्रहण यानी है वाली बात तो ग्रहण हुई, फिर वो अंतर्मुख कितना छोटा है, फिर ज्ञान उपयोग में क्या हुआ, ये कौन है, ये स्त्री है, ये कौन, बड़े कौन है, छोटे कौन है, उसमें क्या विशेषता है, वो सब हमने कौन हमने पहचान लिया, वो ज्ञान हुआ। अभी इसकी बात समाधान देखो, ऐसा नहीं, क्योंकि आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थों में साधारण रूप से पाया जाता है। देखो, संपूर्ण बाह्य पदार्थों में आत्मा बाह्य सामान्यपण, इसको आत्मा कहा। फिर से देखो, इसलिए उक्त वचन में सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पद से ग्रहण किया जाता है, यानी ये वाक्य नहीं पढ़ते केवल आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन और पर पदार्थ को ग्रहण करता है वो ज्ञान, इस परिभाषा पर संतुष्ट हो जाते हैं। आत्मा किसको कहा, और इसकी बात अभी और आगे एक्सप्लेन करेंगे कि संपूर्ण बाह्य पदार्थों में साधारण रूप से पाया जाता है कौन, आत्मा, इसलिए सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पद से ग्रहण किया, इसका कहते आत्मा को जान, आत्मा को ग्रहण किया। संपूर्ण बाह्य पदार्थों में उसमें भेद किए बिना जो है पाया जाता है तो उसको आत्मा कहा। अभी वो बात अभी आगे और बताने वाले, देखो फिर से शंकाकार पूछता है यह कैसा जाना गया, यहाँ पर सामान्य पद से आत्मा का ही ग्रहण किया है, यानी ये सामान्य ने वस्तुओं में भेद किए बिना ग्रहण करना उसी को आत्मा कहा, और उस आत्मा को जो ग्रहण करता है वो दर्शन कहा। ख्याल में अटपटी, हमने नहीं सुनी ऐसी बातें लगती। देखो अभी ये हमने तो कल भी पढ़ा था इसको, फिर दोबारा पढ़ रहे इसीलिए। नीचे का समाधान, क्योंकि पदार्थों के आकार अर्थात भेद को नहीं करके इस वचन से उक्त बात जानी जाती है, इसी को स्पष्ट करते हैं। भावों के अर्थात बाह्य पदार्थों के आकार अर्थात यानी भाव किसको कहा? बाह्य पदार्थों के आकारों को। प्रतिकर्म व्यवस्था को नहीं करके जो ग्रहण होता है उसको दर्शन कहते हैं। यानी दर्शन में सबको भेद कर करके ग्रहण नहीं किया है, बिना भेद किए उसने ग्रहण किया है। फिर भी इसी अर्थ को दृढ़ करने के लिए कहते हैं, नहीं इसका और अर्थ समझाते हैं। देखो ये अपनी भाषा में, यह अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है, इत्यादि रूप से पदार्थों की विशेषता न करके हमने क्या बोला, ये सोनी बेन है और ये तेजल है, ऐसे रूप से पदार्थों की दो व्यक्तियों की विशेषता नहीं करके जो ग्रहण होता है उसको दर्शन। यही बात हुई ना, कोई एक जगह अलग बात दूसरी जगह ऐसा नहीं। ये सामान्य रूप से ग्रहण करने को आत्मा कहते हैं और वो आत्मा का ग्रहण है वो दर्शन का है। और बाह्य के आकार आकार का ग्रहण होता है, पदार्थों का होता है ना, उसके आकारों का ग्रहण होता है उसको ज्ञान का है। पहले जो बताया था उसी को यहाँ एक्सप्लेन किया है, वहां कुछ अथवा के अन्य अर्थ तो नहीं बताया है। आत्मा का ग्रहण होता है, आत्मा का अर्थ किया क्या, बाह्य पदार्थों में उनके आकारों के ग्रहण बिना की बात है, यानी विदाउट डिफरेंशिएटिंग। सामान्य मात्र उनकी सत्ता मात्र का ग्रहण होता है और उसी को यहाँ आत्मा कहने में आता है। आपके प्रश्न का भी यही उत्तर है, अंतर्मुख अंतर्मुख और बहिर्मुख अपने को इसी का ये इसी को वो अंतर्मुख वाली बात है। यहाँ लिखा ना स्पष्ट में लिखा कि यह अमुक पदार्थ है, यह अमुक पदार्थ है, इत्यादि रूप से पदार्थों की विशेषता न करके। पदार्थों की विशेषता कब होगी, उनके अलग अलग भाव ख्याल में आए गए तो, जिसको हम आकार कहेंगे उसको दर्शन कहते। इस कथन से यदि कोई ऐसी आशंका करे कि बाह्य पदार्थों में रहने वाले सामान्य को ग्रहण करना दर्शन है तो उसकी ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं, तो पहले उन्होंने बताया था, क्योंकि विशेष रहित केवल सामान्य अवस्तु स्वरूप है, वो वस्तु ही नहीं घटित होती, इसलिए वह दर्शन के विषय भाव को नहीं प्राप्त होते हैं। वो कर्मपना, दर्शन का कर्म क्या है, दर्शन का विषय उसका कर्म है। ज्ञान का विषय क्या है, उसका विषय जो है ये ही हो, उसने जाना ये उसका कर्म हुआ। उसी प्रकार सामान्य के बिना केवल विशेष भी ज्ञान के द्वारा ग्राह्य नहीं हो सकता, क्योंकि अवस्तु रूप वो अवस्तु है ना, सामान्य बिना कहीं विशेष रहता हो ना? हमारे पास सोना नहीं है पर सोने की बंगड़ी बहुत है नहीं? जल्दी आते क्या अवस्वरूप केवल विशेष अथवा केवल सामान्य का ग्रहण मान लिया जावे तो अति प्रसंग दोष आता है, नहीं वो दोष है, उसमें तो कुछ बात घटित नहीं होती वस्तु व्यवस्था के। ये तो यहाँ तक अपना कल का विषय चला, अब उसके आगे पढ़ेंगे। शंका फिर, दर्शन के लक्षण को इस प्रकार मान लेने पर अनध्यवसाय को दर्शन मानना पड़ेगा। ये अनध्यवसाय समझते हैं ना, हमने वो ज्ञान के तीन भेद देखे थे कि जो ज्ञान में दोष कौन से हो सकते, एक संशय, संशय ने ये है कि ये है, वो संशय विपर्य है कुछ और हमने मान लिया कुछ उल्टा, वो हो गया विपर्य। अनध्यवसाय ने जाना तो सही मगर वो क्या है वो ख्याल में नहीं आया, यानी चलते चलते पैर में कुछ गीला लगा, कीचड़ था कि कुछ, वो छाना गिरा था, गोबर गिरा था कि कुछ, और डेढ़ का आपके क्या कहते हैं मेंढक टच करके गया, कुछ ख्याल नहीं आया, कुछ तो ऐसा लगा तो है वाली बात है ना, हाँ अनिर्णय। परंतु वो तो ज्ञान का भेद है, उसको ये कहते हैं कि दर्शन को भी अगर ऐसा कहेंगे, सामान्य का या अवलोकन जिसको कहेंगे विदाउट डिफरेंशिएटिंग हुआ उसको दर्शन कहेंगे, अनध्यवसाय और दर्शन एक हो जाएगा, ये उसका प्रश्न है, अभी उसका उत्तर देखेंगे। नहीं, क्योंकि बाह्यार्थ का निश्चय न करते हुए भी शंका ऐसी है, दर्शन का लक्षण क्या माना है, सामान्य रूप से, यानी भेद किए बिना, है ना, ये अमुक पदार्थ है, ये अमुक पदार्थ है, ऐसे पदार्थों की विशेषता न करके जो उसके सत्ता मात्र का ग्रहण हुआ है उसको दर्शन कहा। तो कहते उसको हम ज्ञान के भी एक भेद है ना, अनध्यवसाय हुआ उसको, तो ये और ये समान हो जाएगा। अब इसका उत्तर सुनो तो आपको ख्याल में आएगा, नहीं, क्योंकि बाह्यार्थ का निश्चय न करते हुए भी स्वरूप का निश्चय करने वाला दर्शन है। बाह्यार्थ का यानी उसके भावों का, आकारों का, विशेषों का ग्रहण नहीं करते हुए उसने उसका स्वरूप का यानी उसके तो सत्ता मात्र का ग्रहण किया ना, स्वरूप ने अपना अकेला आत्मा का नहीं लेना, स्वरूप ने उसका उसका बस सत्ता मात्र है, उसी का आत्मा कहा है यहाँ पर, उसका तो ग्रहण हो गया इसको, इसलिए वह अनध्यवसाय रूप नहीं है। ऐसा दर्शन अविसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है, यानी उसमें तो उसे सत्ता का ग्रहण हो ही गया है, वो सत्ता है कि नहीं ऐसा उसमें कोई ये नहीं है। हाँ, और जो प्रतिभास अर्थात ज्ञान सामान्य है वह प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है, क्योंकि उसमें विसंवाद और अविसंवाद ये दोनों रूप पाए जाते हैं। यह क्या कहते हैं, ये प्रतिभास तो हो गया, ज्ञान सामान्य है वो तो प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है। अप्रमाण क्यों कहा, उसमें अगर संशय विपर्य और अनध्यवसाय होते उसको अप्रमाण कहते हैं, और इन दोषों से रहित वाला ज्ञान उसको प्रमाण कहते हैं। सम्यक ज्ञानम प्रमाणम, यानी वो वस्तु के वस्तु का उसने सही रूप से व्यवस्थित जान लिया। जानतो नहीं, ग्रहण को तो जानने में वो ज्ञान हो गया, सत्ता मात्र का ग्रहण हुआ, ज्ञान होने के पहले ये ये हो गया वस्तु की, प्रत्येक वस्तु की। ग्रहण करने को दो नाम है, ग्रहण करना यानी चैतन्य उपयोग को ग्रहण करना कहते हैं, ग्रहण करना यानी जानने के अर्थ में भी आता है दर्शन के अंदर, जिसको एक नाम है ग्रहण करना, एक नाम है प्रतिभास, एक नाम है अवलोकन, ये सब दर्शन ज्ञान दोनों के लिए शब्द आते हैं। हाँ, ग्रहण करना दोनों के लिए, तो इसने कैसे ग्रहण किया, बाह्यार्थ के भावों के यानी आकारों को ग्रहण किए बिना बस पदार्थों के है इतना ग्रहण किया, वो दर्शन हुआ। वो क्या है ये ग्रहण हुआ, ज्ञान हुआ।
दर्शन में लगते
वो सिर्फ ज्ञान में लगते, दर्शन में लगते ही नहीं, ये यही कह रहे हैं कि दर्शन में विसंवाद होता ही नहीं है। वो संशय हुआ, हाँ, वो संशय हुआ, विपर्य ने उल्टा, उल्टे कोटे का पेंडुलम, कभी इधर कभी उधर।
अच्छा
अच्छा
आत्मा आरूप है और हमने माना रूपी है, तो वो विपर्य ज्ञान, और अनध्यवसाय यानी कोई निर्णय नहीं हो रहे, ये सारे ज्ञान के दोष है। कौन से, सम्यक ज्ञान जिसके नहीं है, मिथ्या ज्ञान के ये प्रकार है,
उसको विसंवाद,
ये दोषों से रहित सहित है। अच्छा हो गया आपने दर्शन में नहीं डाला।
देखो दर्शन, अभी मैं कहती हूँ, अभी कुछ दूर दिख रहा है, क्या है वो, झाड़ का ठूंठा है, खोड़ कहते ना उसको, ट्रंक ऑफ अ ट्री,
खोड़
आप क्या कहते हैं, ठूंठा, क्या कहते हैं, ठूंठा बोलते हैं। हाँ, तो दूर कोई ठूठा था और हमने उसको आदमी मान लिया, पुरुष कहते उसको, आदमी मान लिया, आदमी जाना, मानने के बाद छोड़ो, जाना हमने उसको, आज तो ये क्या हुआ, ज्ञान सही नहीं है। पर ये दोनों ज्ञान, भले वो किसी ने उसको आदमी जाना और किसी ने उसको झाड़ है तो झाड़ जाना, जानने के पहले क्या हुआ था, दर्शन हुआ था कि नहीं, सत्ता मात्र का वहां तो डिफ्रेंशिएट करना ही नहीं ना, ये आदमी है कि झाड़ है, ये तो बाद में सवाल आएगा, वो तो ज्ञान का है, ज्ञान ने सही जाना कि थोड़ा गलत जाना है, वो तो ज्ञान का भेद हुआ। उसके पहले दर्शन ने तो अपना काम किया, उसमें तो कोई विसंवाद होता ही नहीं है, ये कहना लगते। देखो ये क्या है, दर्शन अविसंवादी होने के कारण प्रमाण ही है, वहां कहां प्रमाण अप्रमाण लगाया, ये फिर पढ़ना आप वाक्य, आप ही घोटाला कर रहे हो। दर्शन को तो प्रमाण ही साबित कर रहे हैं, प्रमाण और अप्रमाण ये बातें ज्ञान में लगेगी, जो ज्ञान सही नहीं जान रहा है वो अप्रमाण हुआ।
ये सेकंड लाइन में लिखा है,
फिर से देखो, बाह्यार्थ का निश्चय, बाह्यार्थ किसको, अकेले बाह्य पदार्थ को बाह्यार्थ नहीं कहा, पदार्थ तो है परंतु उसके जो यहाँ लिखा है बाह्य पदार्थों के आकार, पेज नंबर 148 नीचे से तीसरी लाइन, बाह्य पदार्थों के आकार को नहीं ग्रहण करता है दर्शन, उसको बाह्यार्थ कहा। तो बाह्यार्थ का निश्चय न करते हुए भी, निश्चय हुआ तो ज्ञान हो गया, और उसका मात्र है इतना ग्रहण किया, वो क्या है, वो ज्ञान का कार्य है, ये वो दर्शन का कार्य है, इतना ग्रहण हुआ वो दर्शन हुआ, उसमें होता ही नहीं है, उसने तो ग्रहण तो हो गया, उसको है इतना, उसने ग्रहण कर लिया, तो उसमें तो कोई प्रमाण अप्रमाण की बात ही नहीं है, या तो ग्रहण होगा या नहीं होगा, या तो उसने इसका दर्शन हुआ या नहीं हुआ, बस इतना ही होगा ना, किसी अन्य पदार्थ के बारे में उसका होगा, परंतु दर्शन हुआ है, सत्ता का ग्रहण हुआ है। ज्ञान होता है तो सही जानना या नहीं सही जानना, वो तो ज्ञान का भेद हो गया, उसने वो विशेषों को जानते हुए उसमें कुछ अलग जान लिया।
यानी यहाँ पर ज्ञान में
प्रमाण अप्रमाण,
सुनो सुनो, संवाद विसंवाद, या यानी ज्ञान में विद फ्लॉ और विदाउट फ्लॉ, ऐसा ज्ञान हो सकता है, लेकिन दर्शन में नहीं होता है,
उसको विसंवाद और अविसंवाद का, अविसंवाद यानी सही है, ज्ञान में सही ज्ञान या थोड़ा खोटा ज्ञान, ऐसा ज्ञान में लगेगा,
यानी मिथ्या ज्ञान सम्यक ज्ञान ये ज्ञान में लगेगा, मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन ऐसा दर्शन में नहीं लगेगा,
जो हम मिथ्या दर्शन कहते हैं वो वाला दर्शन नहीं, ज्ञान दर्शन वाले दर्शन में मिथ्या
और श्रद्धा का
कुछ नहीं होता है, वो दर्शन जो है मिथ्या दर्शन सम्यक दर्शन वो श्रद्धा वाला दर्शन है, एक ही दर्शन शब्द दोनों जगह आता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत कंफ्यूजन चलती है, और यही धवला का, देखो आत्मा को ग्रहण करता है वो ज्ञान दर्शन है, और पर को इस पर ही चर्चा चल रही है, और उसके धवला के एक पेज की बात तो उदाहरण ले लेते हैं, पर आगे इतना एक्सप्लेनेशन है उसको देखते नहीं है। देखो यहाँ ऐसा लिखा है, ऐसा
क्योंकि
आत्मा ही किसको कहा, सामान्य बाह्यार्थों के विशेषों को ग्रहण नहीं करना, सामान्य से ग्रहण करना ही उसको आत्मा का, उसी को आत्मा कहा है।
ऐसा है, ये उदाहरण इसलिए देते कि उनके मिथ्या कल्पनाओं की पुष्टि करने के लिए,
नहीं उसमें और कंफ्यूजन बढ़ाते हैं, हाँ। सुनने वालों का भी बढ़ता है ना, कि आत्मा को ग्रहण करता है वो दर्शन है, और पर को ग्रहण करता है वो ज्ञान है, ऐसा उसमें आता है, नियमसार में तो होता है ना, स्व और पर, दर्शन का भी विषय स्व पर है, पर उसमें वो भेद किए बिना वाला ग्रहण होगा उसमें, ख्याल में आएगा। ये दर्शन ज्ञान के बारे में बहुत कंफ्यूजन चलता है, हमें भी शुरू में बहुत प्रश्न उठते थे, दर्शन उपयोग होता है तो ज्ञान का कार्य क्या चल रहा है, ये उपयोग की बात अलग है और पूरे दर्शन की पर्याय की बात अलग है, उपयोग और लब्धि मिलकर ये छद्मस्थ के जो है लब्धि उपयोग मिलकर ये दोनों ही गुणों का कार्य चल रहा है, उपयोग एक के बाद एक हो रहा है, ये शास्त्र में उसका उदाहरण आता है ना, कौवे के लिए कहते कि आंखें दो है और उसमें किकी एक है कहते हैं, आपने शायद कभी कौवा खिड़की पर बैठता है तो बीच बीच में वो चमकता है गोल, तो वो जो गोल चमकने वाली बात है कभी इस आंख में और कभी इस आंख में चली जाती है,
उसकी एक ही आंख है,
नहीं आंखें दो है किकी एक है ऐसा कहते हैं, वो अंदर का गोल गोल जो होता है, रेटिना शायद कुछ कुछ जो होगा वो, जो कोई हमेशा गुरुदेव के प्रवचन में आता है, हम देखते भी है ना, तो ऐसा देखता है कौवा तो एकदम बीच में वो एकदम व्हाइटिश राउंड ऐसा एकदम चमकता है, हर बार नहीं होता वो, तो इधर जैसे आई बॉल जैसे होगा ना कुछ अंदर की
कंस्ट्रक्शन, आई बॉल जो ये बाहर जो दिख रहा है उसको आई बॉल कहेंगे ना,
नहीं ये जो हमारा काला जो दिख रहा है वो, परंतु वो अंदर का जो कुछ चमकता है अभी पता नहीं पता नहीं, इतने समझ नहीं, दृष्टांत पूर्ता ही समझ लो
ऐसा
ही
जीव का दर्शन उपयोग
हाँ छद्मस्तक ऐसा होता है उपयोग में, ये एक के बाद ये क्रम है, इसको कहेंगे क्रमिक उपयोग, दर्शनों उपयोग और ज्ञान उपयोग क्रम से होते हैं, एट ए टाइम नहीं होते, किसके छद्मस्तक के और केवली भगवान के एट ए टाइम होते हैं, क्योंकि उनका ज्ञान और दर्शन जो है वो मात्र उपयोग रूप ही है पूरा का पूरा, उसमें लब्धि और उपयोग ऐसे भेद नहीं है, उनके तो उपयोग स्वरूप ही है, ख्याल में है ना, और वो सभी त्रिकालवर्ती, सभी जो त्रिकाल गोचर और सभी जो कुछ लोक अलोक सब कुछ वो उनके एट ए टाइम ज्ञान का विषय है, एट ए टाइम दर्शन का विषय है, युगपत कहेंगे। यानी दर्शन में ये प्रमाण अप्रमाण बात ही नहीं, वो प्रमाण ही है, ज्ञान में प्रमाण और अप्रमाण, जो प्रमाण है उसको अविसंवादी कहेंगे, अप्रमाण है उसको विसंवाद कहेंगे, विसंवाद है ना वो बराबर नहीं, ठीक नहीं है, उसमें दोष है, गलत है।
मेरा एक सबको प्रश्न है, तो क्या हमें युगपत उपयोग रखना करना है या क्रमिक रखना है?
बात सही है, करना कुछ
नहीं, अवस्था तो प्राप्त करनी की नहीं, करना कुछ नहीं ऐसा थोड़ी चलेगा। अरे वाह,
वो भी उनको युगपत जानने में आता
हो जाता है,
हो जाता है।
यानी अभी केवल ज्ञान प्राप्त करना है, केवल ही अवस्था प्राप्त करनी है, इतना तो नक्की हो जाए कि जब मिले जब मिले।
ये समाधान पढ़ रहे थे आप 149
पे। हाँ समाधान पढ़ रहे थे, वो पढ़ा ना हमने,
फिर से
दोबारा देखो। प्रश्न क्या पूछा था कि दर्शन का ऐसा लक्षण मानेंगे तो दर्शन कहो या ये ज्ञान में जो अनध्यवसान नाम का जो ज्ञान है, तो दोनों एक समान ही हो गए, उसमें डिफरेंस क्या रहा? उसका समाधान तो कहते बाह्यार्थ का निश्चय न करते हुए भी, यानी पदार्थों को ये क्या है वो पहचाने बिना भी स्वरूप का निश्चय करने वाला दर्शन, स्वरूप यानी पदार्थ की सत्ता, सत्ता सत्ता बस, उसी को आत्मा कहा। इसलिए वो अनध्यवसाय रूप नहीं है। यही बात बताई थी पेज नंबर 148। अर्थ आत्मा कैसा किया? देखो नीचे से दूसरा समाधान पेज नंबर 148। आत्मा संपूर्ण बाह्य पदार्थों में साधारण रूप से पाया जाता है, इसलिए उक्त वचन में सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा का ही सामान्य पद से ग्रहण किया गया है। सामान्य संज्ञा को प्राप्त आत्मा, यानी आत्मा क्या कर रहा है संपूर्ण पदार्थों में, बस वो है वाली बात ग्रहण कर रहा है, इसलिए उसी को आत्मा कह दिया उन्होंने। सत्ता इन्हें अभी बता ना, किसी में डिफ्रेंशिएट किए बिना सत्ता मात्र को ग्रहण किया, यानी उसी को कहा आत्मा का ग्रहण किया, उसी को कहा स्वरूप का निश्चय किया। तो कहते ऐसा दर्शन अविसंवादी होने के कारण, अविसंवादी उसमें कोई वो है बस इतना जान लिया, है में क्या है को नहीं ऐसे थोड़े ही, वो तो नहीं जाना उसने, उसको दर्शन ही नहीं हुआ कहेंगे। जिसको हमने है रूप से ग्रहण किया है तो उसमें वो तो काला है कि गोरा है, वो तो ज्ञान का कार्य है में तो कोई विसंवाद होता ही नहीं है, वो दर्शन का कार्य है, इसलिए दर्शन प्रमाण ही है। और जो प्रतिभास अर्थात ज्ञान सामान्य है वह प्रमाण भी और अप्रमाण भी है, क्योंकि उसमें विसंवाद और अविसंवाद ये दोनों रूप पाए जाते हैं, तो सम्यक ज्ञान प्रमाण, और उसमें जो कुछ दोष सहित वाला होगा है कुछ और, हमने जाना कुछ और, तो उसको हम विसंवाद कहेंगे, अप्रमाण कहेंगे, जिसमें वो संशय होता है, विपर्य होता है, अनभ्यवसाय होता है। अथवा
ज्ञान सामान्य जो कहा गया है,
ज्ञान इन जनरल,
ज्ञान
गुण की बात नहीं है यहाँ पर, जानने रूप की बात है। हाँ, ज्ञान हुआ जो कहते हैं, सम्यक ज्ञानम प्रमाणम जी की बात है, ज्ञान में प्रमाण जो जाना हुआ है वो प्रमाण भी है और अप्रमाण भी है। प्रतिभास लिया ना,
ज्ञान सामान्य में क्या लेना,
ज्ञान इन जनरल, उसमें मतिशुता भेद नहीं करते हुए ज्ञान सामान्य ऐसा लिया, पर्याय
की।
हाँ, ये जानना हुआ, गुण और पर्याय की वही है, पर्याय जानना तो हुआ, पर क्या जाना, कैसे जाना, इंद्रिय के जाना द्वारा के, आत्मा के द्वारा, वो चर्चा नहीं, वो ज्ञान सामान्य प्रतिभास हुआ है उसको, क्योंकि ज्ञान गुण में प्रमाण अप्रमाण की बात ही नहीं है।
हमने जो सीखा था कि ज्ञान, शुद्ध ज्ञान,
उसमें
ये बाकी पहले पांच भेद छोड़ के जो रहता है वो ज्ञान, ज्ञान
जानना, जानना जानना हुआ, वो ज्ञान, उसको ज्ञान सामान्य कहेंगे। अब आगे, अथवा आलोकन वृत्ति को अर्थात आत्मा के व्यापार को दर्शन कहते हैं।
आलोकन
यानी अवलोकन कहो, आलोकन कहो, इसका अर्थ यह है कि जो आलोकन करता है उसे आलोकन अर्थात आत्मा कहते हैं, और वर्तन अर्थात व्यापार को वृत्ति कहते हैं, तथा आलोकन अर्थात आत्मा की वृत्ति को आलोकन वृत्ति कहते हैं। जो आलोकन करता है वो आत्मा, उसका जो वर्तन है यानी व्यापार, वो वृत्ति यानी आत्मा की वृत्ति को आलोकन वृत्ति कहते हैं। इसी का नाम स्वसंवेदन है, उसी को दर्शन कहते हैं। यहाँ पर दर्शन इस शब्द से लक्ष्य का निर्देश किया है, अथवा प्रकाश वृत्ति को दर्शन कहते हैं। इसका अर्थ इस प्रकार है कि प्रकाश ज्ञान को कहते हैं, और उस ज्ञान के लिए जो आत्मा का व्यापार होता है उसे प्रकाश वृत्ति कहते हैं। यानी ज्ञान के पहले होते ना, ज्ञान के लिए आत्मा ने व्यापार किया, कार्य हुआ, वो क्या हुआ, दर्शन हुआ, क्योंकि उसमें पदार्थों का है रूप से पहले ग्रहण हुआ, फिर उसको जानने की बात हो, इसको कहते हैं प्रकाश वृत्ति। और वही दर्शन है अर्थात विषय और विषयी के योग्य देश में होने की पूर्वावस्था को दर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, विषय क्या है और विषय क्या है,
ज्ञेय,
विषय ने ज्ञेय, और विषय को ग्रहण करता है जानने वाला, वो ज्ञान, वो विषयी है, ज्ञान विषयी है और ज्ञेय विषय है। तो जानने, ज्ञान ने ज्ञेय को जाना, तो कहते विषय और विषयी के योग्य देश में होने की पूर्वावस्था को, जैसे हमने ज्ञान ने इसको जाना, तो इसके सन्मुख जो कुछ उसकी आत्मा की वृत्ति हुई, देखने के लिए हम यहाँ से यहाँ देखा कहेंगे, परंतु यहाँ देख रहे तो हमने सुनने के प्रति अपना उपयोग किया, तो ये उपयोग की वहाँ वृत्ति हुई ना, वो जानने के पहले जो कुछ वहाँ कार्य हुआ है उसको दर्शन कहेंगे, इसको वृत्ति का। ऐसे भी चारित्र गुण के लिए भी वृत्ति शब्द आता है, हमारे में जो शुभ राग उठा उसको भी वृत्ति कहते हैं। यहाँ तो पर्याय दर्शन वो ज्ञान में तो क्या लब्धि उपयोग वो सब मिलकर, यहाँ उपयोग की चर्चा चल रही है, उपयोग में ये क्रमिक है। अगर पूरे पर्याय में क्रम मानना पड़ेगा, जब दर्शन का कार्य चल रहा है तो ज्ञान सो रहा है, और जब ज्ञान का कार्य चल रहा है तब दर्शन सो रहा है, ऐसा मानना पड़ेगा। गुणों का कार्य रुक गया ऐसा मानना पड़ेगा, ख्याल में आई ना बात, ये क्रमिक तो उपयोग है, उपयोग में क्रम है, नहीं तो ज्ञान में कुछ खंड पड़ गया, अभी जानने का कार्य रुक गया, ऐसा मानना पड़ेगा।
देखो हम इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जीव जो है वो कब से है, अनादि से है, तो उसके अंदर गुण कब से है, अनादि से है, और उन गुणों की पर्याय कब से है, वो भी अनादि से है।
देखो इसके लिए उन्होंने एक गाथा बताई 93 नंबर।
तो उनकी पर्याय यानी परिणमन होना कब रुकेगा, ज्ञान गुण का, दर्शन गुण का, निरंतर चालू रहेगा क्योंकि उसमें द्रव्यत्व नाम का गुण है, तो उसका परिणमन निरंतर चालू रहे ये बात निश्चित है। तो अभी यहाँ बात जो हो रही है वो उपयोग की हो रही है, उपयोग यानी हम अटेंशन कहेंगे। अभी हम जब सुनने का काम कर रहे हैं तो वो हमारा अटेंशन सुनने की तरफ है, उस समय हमारी बाकी इंद्रियां है लेकिन उधर अपना अटेंशन नहीं है, उसको कहेंगे उपयोग। तो जब दर्शनोपयोग हो रहा है तब ज्ञान गुण की ज्ञान जानना 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 रूप परिणति हो रही है, पर्याय हो रही, उपयोग दर्शन में लगा है। अब जब ज्ञानोपयोग में जाएंगे तो ज्ञानोपयोग में दर्शन गुण की जो उसकी जो पर्याय है वो तो चलती रहेगी, दर्शन वो उसका कार्य रुक जाएगा तो एक दर्शन गुण उड़ जाएगा, यानी उनकी पर्याय परिणति जो चल ही रही है, उपयोग सिर्फ यहाँ से यहाँ यहाँ से यहाँ जा रहा है। ख्याल में आई बात? हाँ आगे
स्वसंवेदन ज्ञान दर्शन को स्वसंवेदन स्वसंवेदन है उसी को दर्शन कहते हैं। तो स्वसंवेदन में हम लोग मिथ्या दर्शन और सम्यक दर्शन कहते हैं, तो मिथ्या दर्शन तो है ही नहीं ऐसे, तो दर्शन तो असंवादी है।
दर्शन जो है वो श्रद्धा गुण के लिए मिथ्या सम्यक शब्द लगते हैं, यहाँ जो दर्शन की बात हो रही है ज्ञान दर्शन वाले दर्शन की हो रही है।
नहीं, मैं नहीं
समझ। देखो यहाँ दर्शन गुण है और ज्ञान गुण है, ये चैतन्य के दो भेद है, इसमें सम्य दर्शन मिथ्या दर्शन ये पर्याय इसकी नहीं है,
नहीं है।
दर्शन पूर्वक ज्ञानोपयोग होता है, ये दर्शन उपयोग ज्ञानोपयोग की बात है, और जो आप सम्यक श्रद्धान हुआ सम्य दर्शन जीव को हुआ, आत्मा की अनुभूति हुई, वो दर्शन शब्द तो वहां पर भी आया है, वो सम्यक दर्शन श्रद्धा गुण की पर्याय है, ये दर्शन गुण की नहीं है।
अच्छा, वो श्रद्धा गुण की पर्याय,
ये अभी अभी बताया था ना।
हाँ।
फिर से सुनो उनसे, पक्का होगा। और
मैं तो कहने के लिए राजी हूँ, आपको सुनना है तो बताऊंगा। देखो देखो क्या बात होती है, एक ही नाम के अनेक मतलब पदार्थ हो सकते हैं, जैसे हमने अश्विन भाई कहा तो दुनिया में अश्विन भाई एक ही है क्या? बहुत है, ख्याल में है ना। वैसा दर्शन नाम की जब बात आती है तब हमारा कन्फ्यूजन इसलिए हो रहा है कि दर्शन कहने से कभी कभी दर्शन सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन इसके लिए दर्शन की बात होती है, और वो जो दर्शन है वो श्रद्धा गुण की पर्याय की बात है, और जब आत्मा के स्वभाव की बात चल रही है तो ज्ञान दर्शन ये गुण की बात हो रही है। स्वभाव क्या है तो कहते हैं कि ज्ञान और दर्शन इसका स्वभाव है, लेकिन सम्यक दर्शन और मिथ्या दर्शन यह तो पर्याय है, ख्याल में ना। तो श्रद्धा गुण की पर्याय को दर्शन ऐसा कहने में आता है, वहाँ हम ऐसा समझते हैं कि ये स्वदर्शन यानी स्वसंवेदन को दर्शन कहा है, यहाँ स्वसंवेदन यानी पूरे वस्तु को उसने ग्रहण किया, स्वसंवेदन यानी अपना ही ग्रहण किया ऐसा थोड़ी है। अभी केवल ज्ञानी जो है तो विश्व के सारे पदार्थों को युगपत जाने, तो क्या सिर्फ आत्मा का दर्शन करेंगे वो? ख्याल में है ना, यानी यहाँ जो एक ही शब्द के अनेक अर्थ अनेक जगह लगते हैं तो उसको हमें बराबर समझना चाहिए। आपकी भाषा में बोलना है जहाँ जहाँ जे जे योग्य छे तहाँ समझूं ते, ये यही बात बताते हैं। यहाँ स्वसंवेदन का अर्थ सिर्फ ये नहीं है, आत्मा का ही अनुभव कर रहा है वो नहीं है, ये वेदन जो हो रहा है ना वो तो चैतन्य उपयोग में आया सब, उसमें चैतन्य उपयोग के दो भेद है, एक ज्ञानोपयोग एक दर्शन उपयोग, और थोड़ा आगे जाने गए तो शुद्ध उपयोग भी आता है, वो चारित्र गुण की अपेक्षा से उपयोग शुद्धोपयोग अशुद्धोपयोग, अशुद्धोपयोग के दो भेद, अशुभोपयोग और शुभोपयोग। लेकिन यहाँ तो आपने अभी सिर्फ चैतन्य उपयोग के दो भेद किए, एक ज्ञानोपयोग एक दर्शनोपयोग, उसकी बात।
पेज नंबर 150 पर आए हैं, ये उत्तम च वाली गाथा पढ़ेंगे 93 नंबर के। जमसामण गणम भावाणम नेव कट्टुआयारम अविशेषिऊणत्थे दंसनमिति बन्न दे समये। समय ने या बन्न दे समय, समय में ऐसा कहे ने जिनागम में ऐसा बताया। समय का अर्थ बोल गए ने, परमागम में दर्शन किसको कहा उसकी ये परिभाषा बता रहे। देखो उसका अर्थ नीचे देखते, सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थों को, यानी सभी पदार्थ सामान्य विशेषात्मक ही होते हैं, ऐसे पदार्थों को अलग अलग भेद रूप से ग्रहण नहीं करके, यानी उनका भेद नहीं जान के, यानी ये जो हमने बताया ना टेबल पर इतनी वस्तुएं, आपने मोबाइल रखा है, ये जो कुछ है पेन है पेंसिल है, इनको भेद नहीं करके अलग अलग भेद किया जानने में, वो तो ज्ञान का विषय हो गया। तो अलग अलग भेद रूप से ग्रहण नहीं करके जो सामान्य ग्रहण, सामान्य ग्रहण का अर्थ होता है स्वरूप मात्र का अवभास, उसी को स्वरूप का अवभास, स्वरूप ने अपने आत्मा का ऐसा नहीं लेना है, और उसी को आत्मा भी कह दिया यहाँ, इसी को कहा आत्मा का ग्रहण, उसी को कहा यहाँ स्वसंवेदन। एक किस अर्थ में कौन सा शब्द आया है वो वहां उसका वो अर्थ ले लेना चाहिए। तो स्वरूप,
स्वरूप को हम पदार्थों का अवभाषण होता है, ऐसा लेकिन बराबर है
सत्ता मात्र अवलोकन, ऐसा ले लो उसका स्वरूप का अवभाषण है, सत्ता मात्र अवलोकन होता है, उसकी सत्ता है बस इतना ही ग्रहण हुआ, उसको परमागम में दर्शन कहा है। बहुत सारी चर्चा हो गई
है। जो जो श्लोकन प्रकाशक थे वहाँ पे ये दर्शन अपेक्षा श्रोता प्रकाश करती और ज्ञान अपेक्षा पढ़ता भी प्रकाश करती है, ऐसा नहीं लेना।
ऐसा नहीं लेना, वही तो चर्चा हुई इतने टाइम से। नहीं खाली नहीं पूछना, मगर सही समझना,
शुरुआत हुई है
सही समझना। अब ये अभी क्या पढ़ा आपने, बाह्य पदार्थों को अलग अलग ग्रहण नहीं करके सामान्य रूप से ग्रहण करता, बाह्य पदार्थों को ग्रहण करता है कि नहीं करता है, ख्याल में आई ना। यानी कहीं मन में कोई संशय है तो पूछना, मगर यह ऐसा ही कोई कंफ्यूज नहीं रहना।
देखो बात ऐसी है, ज्ञान की अपेक्षा से जब हम देखते हैं कि स्व पर प्रकाशक है, हाँ स्व पर में क्या क्या आया, मैं और दुनिया के सारे पदार्थ, यहाँ क्या है मैं और दुनिया के सारे पदार्थ, इनमें भेद किए बिना जो सत्ता मात्र सामान्य अवलोकन है वो दर्शन है। तो वो स्वपर को जानता है कि नहीं जानता है, पर स्वपर को है ऐसा नहीं जानता है, वो एट ए टाइम हजार चीज है लाख चीज है अनंत है, उनको एट ए टाइम जानता है भेद किए बिना। यहाँ लिखा ना अलग अलग, अलग अलग भेद रूप से ग्रहण नहीं करके, वो भाषा थोड़ी सी ऐसे 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 घुमा फिरा के ज्यादा तकलीफ होती
है। उसमें स्व स्व को भी ये स्व और ये पर है ऐसा भी भेद नहीं होता, सत्ता का, इसलिए सबको आत्मा कह दिया। ये तो दर्शन मार्गणा के बारे में, दर्शन के संबंध में चर्चा हुई अपने।
क्या होता है हम जगह जगह पे जाते हैं तो वहाँ ऐसे टंगा टंगी चलती है, इसलिए हमारे यहाँ आने वाले आप जैसे अच्छे लोगों को तो सही बात समझनी चाहिए ना, इसलिए डबल डबल फोर्स लगता है उधर से इधर से, मेरे को चुप नहीं बैठा जाता।
देखो नीचे आप फुटनोट देखो, थोड़ा जरा और भी समाधान करेंगे। नीचे जो लिखा है ना सेकंड नंबर की फुटनोट, गोजी वन फोर्टी नाइन की फुटनोट, वो बृहद्रव्य संग्रह की, उसको भी देखो। यदा कोपी परसमय पूछती, यानी जो अन्य मति कोई पूछता है, जब कोई अन्य मति पूछता है, क्या पूछता है, जैनागमे यानी जिनागम में दर्शनम ज्ञानम चैति गुणद्वयम जीवस्य कथ्यते, जीव के दो गुण बताए ज्ञान और दर्शन, तत्कथम घटते इति, वो कैसे घटित होते हैं, तदा तेषां यानी तब उनको क्या बताएं आत्मग्राहकम दर्शनमिति कथिते सति ते न जानन्ति। तो आत्मग्राहक है वो दर्शन है ऐसा कहने पर उनको ख्याल में नहीं आता। पश्चात आचार्य ही तेषां प्रतीत्यर्थम यानी उनको उसकी प्रतीति यानी उसका ज्ञान कराने के लिए स्थूल व्याख्यानेन स्थूल व्याख्यान किया। क्या बहिर्विषये यत् सामान्य परिच्छेदनम तस्य सत्तावलोकन दर्शन संज्ञा स्थापिता यानी बाह्य विषयों में सामान्य जो अवलोकन होता है सत्ता का अवलोकन उसको दर्शन कह दिया। यच्च शुक्लमिदं इत्यादि विशेष परिच्छेदनम तस्य ज्ञान संज्ञा स्थापिता इति दोषो नास्ति। यानी वो ये सफेद है कि काला है ये क्या हुआ विशेष का ज्ञान हुआ ये विशेष परिच्छेदन हुआ विशेष का ग्रहण हुआ उसको ज्ञान कह दिया तो इसमें कोई दोष नहीं है। एक बता दो सिद्धांते पुनः स्वसमय व्याख्यान मुख्य वृत्तिया और सिद्धांतों में सिद्धांत ग्रंथों में स्वसमय की जो व्याख्या है वो मुख्य रूप से होती है। हाँ नहीं यानी अन्य मतियों को समझाने के लिए स्थूल रूप से कुछ अलग कथन आता है और उसकी सूक्ष्म व्याख्या भी हो सकती है ये कहना है।
क्योंकि ऊपर परसमय लिखा ना इसलिए
परसमय पृच्छति कोई अन्य मति वाला पूछता है तो उसको इस तरह से समझाया जाता है।
तो वही मैं कह रहा हूँ कि यहाँ जो लिखा है सिद्धांत पुनः स्वसमय व्याख्यान मुख्य वृत्तिया मैंने उनको ये कह रहे कि जो देवेंद्र भगवान ने बताई हुई बात है वो मुख्य रूप से लेना।
हाँ वो स्वसमय व्याख्यान करते समय उसको लेना वहाँ सूक्ष्म व्याख्यान है। तो कहते तत्र सूक्ष्म व्याख्याने क्रियमाने उसका सूक्ष्म कथन करने पर क्रियमाने सति यानी ऐसा करने पर आचार्य ही आत्मग्राहकम दर्शनम व्याख्यातम इति अत्रापि दोषो नास्ति यानी वहाँ आत्मग्राहक दर्शन है परंतु वहाँ तो आत्मग्राहक दर्शन है उसका आत्मा का अर्थ उन्होंने इतना समझा है ना। ये जो अभी हमने देखा ना सामान्य के सबको उसको आत्मा कह दिया हाँ सामान्य से ग्रहण करना उसी को आत्मा कह दिया। अभी फिर से बोलूँ क्या
अगली फुटनोट
अभी ये पेज नंबर 150 की फुटनोट है जीव कांड की भावानाम सामान्य विशेषात्मक बाह्य पदार्थानाम आकारम। ये भावानाम का अर्थ क्या कहते हैं सामान्य विशेषात्मक जो वस्तुएं हैं बाह्य पदार्थ है उसके आकार यानी भेद भेद ग्रहणम अकृत्वा यानी उसको भेदों का ग्रहण नहीं करके किसका ग्रहण किया सामान्य का। यत् सामान्य ग्रहणम जो सामान्य ग्रहण है उसी का दूसरा नाम क्या है स्वरूप मात्र अवभासनम स्वरूप मात्र का अवभासन होना ग्रहण करना अवभासन होना उसको ज्ञान शब्द मत कहो प्रतिभास कहो ग्रहण कहो अवभासन कहो ज्ञान दर्शन दोनों के लिए ये शब्द आते हैं। सामान्य ग्रहण को ही क्या कहा स्वरूप मात्र अवभासन उस पदार्थों का स्वरूप मात्र अवभासन स्वरूप उस पदार्थों का स्वरूप वो है इसमें बस है उसकी विशेष की बात नहीं ली है उसी को आत्मा कहा। तद दर्शनम इति परमागमे भण्यते ऐसे परमागम में कहा उसको दर्शन वस्तु स्वरूप मात्र ग्रहणम कथम यानी वस्तु स्वरूप मात्र ग्रहण वस्तु स्वरूप मात्र ग्रहण है स्वरूप ने अपना रूप नहीं लिया केवल हाँ वस्तु स्वरूप मात्र ग्रहणम कथम वस्तु स्वरूप ग्रहण मात्र वस्तु स्वरूप का ग्रहण किया उसका अर्थ क्या है कैसे होता है अर्थात बाह्य पदार्थान अविशेष्य जाति क्रिया ग्रहण विकार ही अविकल्प्य बाह्य पदार्थों के अविशेष किया यानी सामान्य यानी उसके विशेषता को छोड़ दिया यानी क्या उसकी जाति क्या है क्या क्रिया करते हैं क्या उसका वगैरह उसके जो विकार है उसके जो भेद है अविकल्प्य इसके भेद किए बिना अविशेष ने उसके अविकल्प्य विकल्प ने उसके भेद करके अविकल्प ने उसके भेद किए बिना स्वपर सत्ताव भाषणम दर्शनम इति अर्था स्व और पर की सत्ता का अवभाषण वो है दर्शन। बाह्य तो पदार्थ हो गई, उसमें आत्मा भी उसके साथ आ गया, इसलिए उसको सबको आत्मा कह देते। उसको स्वरूप कहा, क्या पदार्थों का स्वरूप कहा, पदार्थों के स्वरूप मात्र का अवभास, आत्मा मात्र का अवभास है। अभी उसको स्वरूप कहो, उसका आत्मा को, उसी को आत्मा कह दिया है। जीव कान की बात है। हाँ
रेडा
483 में उसी की बात बताई है। भावानम सामान्य विशेषयानम सर्वमेतम जम वर्णनहीन ग्रहणम जीवेन यदंशनम होदी। यानी भावों का जो सामान्य विशेषात्मक जो स्वरूप है, वर्णनहीन ग्रहणम, वर्णनहीन विशेषताओं से रहित ग्रहण, 482 और 483। अरे वो तो उसमें ब्लू में जाएगा, इसमें ज्ञान मार्गना खत्म होती है, उसमें दर्शन मार्गना उसके अंदर है। अपने पूछा तो मेरा ध्यान नहीं था। वही वही बराबर है, बराबर है। हाँ चलेगा, कोई भी चलेगा। ये दर्शन मार्गना से शुरू होता है इसके अंदर।
पहला अभी जो आपने बताया, और बाद में दूसरा जो है वो प्रापुर बोलने में तो कुछ गड़बड़ होती है।
क्या 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 आपने क्या
482
नहीं, प्रश्न क्या है उसके अंदर?
उसमें कुछ नहीं, इसका ही आपने जो संस्कृत में पढ़ा उसका वहाँ ट्रांसलेशन होना चाहिए,
है ना? 482 में देखो 569 पेज पर है, जो मैंने मेरी वाली जो ट्रांसलेशन वाली है ना बुक, उसकी बात है। भाव, भाव किसको कहा? 569 पेज है इसमें। भाव है सामान्य विशेषात्मक पदार्थ, उसको भाव कह दिया, भावानाम ऐसा आया था ना इसमें। उनके आकार अर्थात भेद का ग्रहण उसको नैव कृत्वा न करके, यानी सामान्य विशेषात्मक पदार्थ है उनके आकार यानी भेदों को न करके, यत सामान्यम ग्रहणम अर्थात जो सत्ता मात्र स्वरूप का प्रतिभासना, ये स्वरूप का सत्ता मात्र स्वरूप उसी को आत्मा कहा गया है। तद दर्शनम, वही दर्शन परमागम में कहा है। कैसे ग्रहण करता है? अर्थान, अर्थ है पदार्थ, अर्थान यानी पदार्थों को कैसे अविशेष्य, यानी उसमें भेद किए बिना, अर्थ जो बाह्य पदार्थ उनको अविशेष्य कैसे भेद नहीं कर रही, कैसे विशेष नहीं किए, जाति क्रिया गुण और प्रकार, यहाँ भी बात आई थी ना, जाति क्रिया ग्रहण विकार ही गुण और प्रकार, विकार यानी प्रकार, प्रकार उसके विकार लिखा है वही उसके प्रकार इत्यादि विशेष न करते हुए, स्व पर सत्ता उपासना है ना, अपना और अन्य का केवल सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण करता है। अपना का भी और पर का भी केवल सामान्य रूप सत्ता मात्र ग्रहण है, और ये सामान्य स्वरूप उसी को स्वरूप कहा, उसी को आत्मा कहा, और आत्मा का ग्रहण है, यानी आत्मा का मतलब मेरा अपना और ये पर का ऐसा उसका अर्थ नहीं लेना।
तो 83
में ऐसा है, सामान्य विशेषात्मक जो पदार्थ उनका स्वरूप मात्र भेद, स्वरूप मात्र का अर्थ भेद रहित जैसे है वैसे जीव सहित स्व पर सत्ता का प्रकाशना वह दर्शन, स्व और पर का सत्ता का प्रकाशना, उसमें स्व का भी प्रकाशना होता है पर का भी प्रकाश, उसमें भी भेद नहीं किया वो सामान्य, क्योंकि स्व पर का भी भेद करने वाला दर्शन हो जाएगा तो वो तो ज्ञान का कार्य हो जाएगा। आगे चले, अभी लेशा की प्रकरण, लेशा का प्रकरण। नीचे का पैराग्राफ 150 पृष्ठ पर ये लेशा मार्गणा की बात यहाँ चलेगी। तो लेशा किसको कहते हैं, ऊपर जो प्राकृत में उसकी परिभाषा क्या है संस्कृत में, लिम्पति इति लेशा। लेशा शब्द कैसे तैयार हुआ, लिम्पती है लिप, ऊपर लेप करते हैं ना, वो लिम्प जो लिम्पन करती है उसे लेशा कहते हैं। यहाँ पर भी जो यहाँ पर जो लिम्पन करती है यह लक्षण भूमि लेपिका में चला जाता है। जैसे पहले के जमाने में आपको मालूम था कि वो गोबर होता है ना, उससे क्या है, वो तो घर पूरा लिम्पते थे। आपने लिम्पा क्या कभी, आता है क्या, दीवार को कलर भी लिम्पते हैं ना, वो तो गोबर भी लगाते हैं, हाँ उससे वो तो सारा कोई साइंस था उसके पीछे। हाँ हाँ ये तो रोज के रोज चूल्हा भी लिमते थे होने के बाद, पूरा रसोई घर लिम्पा जाता था रोज, चूल्हा वगैरह सब उससे, और फिर वो ड्राई किया जाता था। ये पद्धति कहाँ भी सुनी भी नहीं आपने, देखी कहाँ, हाँ ठंडा भी, और उसके उसमें भी कुछ वो मच्छर भी नहीं आते, और वो निर्जंतुक में। हाँ तो कहते जिसके द्वारा जमीन लिपी जाती है उसमें भी ये जिसके द्वारा यहाँ क्या जो लिम्पन करती है उसको लेशा कहते, तो उसको भी लेशा कहना पड़ेगा। यहाँ जीव का प्रकरण चल रहा है ना, तो अभी बताएंगे। इसलिए लक्ष्यभूत लेशा को छोड़कर लक्षण के अलक्ष्य में चले जाने के कारण अतिव्याप्ति दोष आता है, ऐसी अगर कोई शंका करता है। ये अतिव्याप्ति दोष की बात चल रही थी हमने, दोष लक्षण जो सही नहीं है तो उसमें कौन से दोष हो सकते हैं, अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव। अतिव्याप्ति यानी ये तो ये लेशा जो हम कहेंगे यहाँ पर जो लेशा का प्रकरण चल रहा है वो हमारा लक्ष्यभूत हमारा विषय है, उसमें तो वो लेपन करती ही करती है, पर ये जमीन को लेपती है वो गोबर, उसको भी वो लेशा कहना पड़ेगा। यानी ये जो हमारी डेफिनेशन है लक्षण की परिभाषा वो उसमें भी लागू होती है, तो अतिव्याप्ति दोष आ सकता है, ऐसे शंकाकार का शंका हो तो अभी उसके लिए आचार्य उत्तर देंगे। अतिव्याप्ति हमने देखा ना, जीव अमूर्तिक है, पर अमूर्तिक के जीव का लक्षण अगर हम बना देंगे, जीव का एक विशेषण तो होता है पर वही उसका लक्षण बना देंगे तो अन्य भी बहुत सारी चीजें जो है वो अमूर्तिक है, आकाश भी है, धर्म अधर्म काल भी है ना, तो अमूर्तिक पना ये लक्षण नहीं बांध सकते। हाँ उसको आत्मा का एक विशेषण कह सकते हैं, आत्मा अमूर्तिक है वो बात बराबर है, परंतु वो उसका अगर लक्षण ऐसा होना चाहिए कि तो सभी जीवों में तो पाया जाना चाहिए, अभी हम जीव का लक्षण बांध रहे और अन्य किसी में नहीं होना चाहिए तो हम उसको लक्षण कह सकते हैं, क्योंकि लक्षण ऐसे है कि उसके द्वारा वही पदार्थ बिल्कुल ढूंढ सकते हैं, हम समझ सकते हैं उसको लागू। जैसे हम कहते हैं कौवा काला होता है, पर जो जो काला है वो सारे कौवे है क्या, तो कालापना कौवे का लक्षण बांधेंगे तो जो काला है वो सारा कौवा हो जाएगा, उसको अतिव्याप्ति दोष। तो ऐसा कोई शंकाकार कहता है कि आपका ये जो लिम्पति यानी लिम्पन करती उसको लेशा कहने पर उसमें अतिव्याप्ति दोष आता है, ऐसी शंका को मन में उठाकर, चौथी लाइन, आचार्य कहते हैं कि इस प्रकार लेशा का लक्षण करने पर भी अतिव्याप्ति दोष नहीं आता, क्योंकि इस लक्षण में कर्मों से आत्मा को इतने अध्याहार की अपेक्षा है, यानी वो इसमें गर्भित है कि कर्मों से आत्मा को लिम्पन करती है वो लेशा, बताया नहीं है क्योंकि सूत्रों की विशेषता होती है कि उसमें शॉर्ट में बता देते हैं, परंतु यहाँ जीवस्थान की बात है और उसमें ये 14 मार्गणा बता रहे हैं, जीवों की बात है और जीव को क्या किससे लिम्पन हो रहा है, तो कर्मों से, तो जो जीव को कर्मों से लिप्त करती है ये उसमें अर्थ गर्भित है, अध्याहार है उसमें वो इंक्लूडेड है। इसका यह तात्पर्य है जो कर्मों से आत्मा को लिप्त करती है उसको लेशा कहते हैं, अथवा दूसरी परिभाषा, जो आत्मा और प्रवृत्ति अर्थात कर्म का संबंध करने वाली है, उसको लेशा कहते हैं। यानी आत्मा का और कर्म का संबंध कराने वाली, उसके लेप करने वाली या लिंपन करने वाली कहो या संबंध कराने वाली, इस प्रकार लेशा का संबंध लिया, कर्म का संबंध, प्रवृत्ति अर्थात कर्म का संबंध, आत्मा और प्रवृत्ति का प्रकृति है, प्रवृत्ति कर्म पर्यायत्वाद। संबंध कैसा शब्द लिया उन्होंने, ऊपर क्या है, न अत्र अति प्रसंग दोषा, मैं प्रकृति में पढ़ रही हूँ, प्रवृत्ति शब्दस्य कर्म पर्यायत्वात्, नहीं अथवा आत्म प्रवृत्ति संश्लेषण करी लेशा, संश्लेषण है ना, आत्म प्रवृत्ति संश्लेषण करती है उसके, ने संश्लेष संबंध कराती है,
आत्मा और प्रवृत्ति लिखा है, उसकी जगह
नहीं, आत्मा और प्रवृत्ति ऐसे ही है बात है,
तो आत्म प्रवृत्ति लिखा,
आत्म प्रवृत्ति संश्लेषण करी, संश्लेषण करता है किसका, आत्मा का और प्रवृत्ति का, यानी ये प्रवृत्ति है नहीं, वो कर्म है नहीं, वो कर्म यानी वो वाला कर्म नहीं लेना है, कषाय से अनुरंजित योगों की प्रवृत्ति वाली वो प्रवृत्ति यहाँ लेना है, वो बात आएगी देखो, अथवा ये पढ़ा ना अभी हमने, इस प्रकार लेशा का लक्षण करने पर अति प्रसंग दोष भी नहीं आता, क्योंकि यहाँ पर प्रवृत्ति शब्द कर्म का पर्यायवाची ग्रहण किया है, कर्म लिया, और तीसरा अर्थ बताते हैं, अथवा कषाय से अनुरंजित काय योग वचन योग और मनोयोग की प्रवृत्ति को लेशा कहते हैं, यहाँ प्रवृत्ति ने मन वचन काय की प्रवृत्ति को प्रवृत्ति लिया, इस प्रकार का लेशा का लक्षण करने पर केवल कषाय और केवल योग को लेशा नहीं कह सकते, किंतु कषायानुविद्ध अनुविद्ध ने उससे सहित योग प्रवृत्ति को ही लेशा कहते हैं, हम कहते हैं कषाय से अनुरंजित या रंजित, यह बात सिद्ध हो जाती है। अभी हम यही रुकेंगे और इसको फिर कल उसके डेफिनेशन लेके फिर आगे बढ़ेंगे। ये यहाँ तक हमने पढ़ा है, फिर भी जो हम कल लेंगे तो लेशा की परिभाषा लेते हुए पढ़ेंगे आगे। जावानी के